नमामि स्वारम् सचिदानन्दरूपम् लसत् कुण्डालम् गोकुले भ्राजमानम्
प्रथम श्लोक अनुवाद। जिनके कपोलों पर दोदोलेमान मकराकृत कुंडल कीड़ा कर रहे हैं, जो गोकुल नामक अपराकृत चिन्मय धाम में परम शोभायमान हैं, जो दधि भांड फोड़ने के कारण माँ यशोदा के भय से भीत होकर उखल से कूदकर अत्यंत वेग से दौड़ रहे हैं, और जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। दिग्दर्शनी टीका। श्री राधा सहितम नत्वा श्री दामोदर ईश्वरम दामोदर अष्टक व्याख्या दिग्गेश दर्शते अधुना। दिग्दर्शनी टीका का भावानुवाद। अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय आचार्य सिंह रूपिने श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने अतिमर्त चरित्राय स्वाश्रितानांश्च पालिने जीव दुखे सदात्राय श्री नाम प्रेम दायिने गौर आश्रय विग्रहाय कृष्ण कामेकचारिणे रूपानुग प्रवराय विनोदिते स्वरूपिने प्रभुपाद अंतरंगाय सर्व सद गुणशालिने मायावाद तमोधनाय वेदांतार्थ विदे नमः। विराग युग भक्ति रसम प्रयत्निर पाय मान भी सुमंधम कृपां बुद्धे पर दुख दुखी सनातन तम प्रभु माश्रयामि। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर तुष्ये नमः। निरुपादे करुणा वारिणी श्री गुरुपाद पद्म अस्तोत्र शद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज श्री गुरु परंपरा के आचार्यों विशेषता पर दुख दुखी जगत गुरु श्रील सनातन गोस्वामी पाद और महावदन्याय राधा भाव द्युति सुवलित सचिनंदन श्री गौर हरि के चरण कमलों में पुनः पुनः प्रणति पूर्वक उनकी कृपा प्रार्थना कर श्री दामोदर अष्टक की श्री श्रील सनातन गोस्वामी कृत दिग्दर्शनिका का भावानुवाद आरंभ कर रहा हूँ। श्री राधा जी के साथ भगवान श्री दामोदर को प्रणाम कर दिग्दर्शनी नाम की श्री दामोदर अष्टक की यह व्याख्या की जा रही है। सभी कार्यों से पहले दासी विशेष के द्वारा मंगलाचरण करना चाहिए, इसलिए स्तुति के प्रारंभ में ही सत्यव्रत मुनि नमामि पद के द्वारा मंगल की प्रार्थना कर रहे हैं। आगे कुछ भी प्रार्थना करने के पहले पार्थिव वस्तु के तत्व रूप लीला गुण आदि के विशेष द्वारा उत्कर्ष विशेष गोकुल में प्रकटित अपनी भगवत्ता के सार सर्वस्व का वर्णन करते हुए मुनि भक्ति पूर्वक उन्हें पार्थय श्री कृष्ण को नमस्कार कर रहे हैं। किन्हें नमस्कार कर रहा हूँ? ईश्वर को नमस्कार कर रहा हूँ। यहाँ ईश्वर शब्द के तीन अर्थ हैं, सर्वशक्तिमान जगत एक नाथ अथवा निज प्रभु। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर को नमस्कार कर रहा हूँ। इस अर्थ में स्तुति आदि करने के लिए शक्ति की प्रार्थना निहित है। मैं जगत के एकमात्र नाथ को नमस्कार कर रहा हूँ। इस अर्थ में वस्तु का परम वंदनीय होना सूचित होता है। मैं अपने प्रभु को नमस्कार कर रहा हूँ। इस अर्थ में भक्ति विशेष सूचित होती है। वह ईश्वर किस प्रकार का है? सच्चिदानंद रूपम, वह सच्चिदानंद घन विग्रह है। यहाँ तत्व विशेष के द्वारा पार्थिव वस्तु का उत्कर्ष विशेष उक्त हुआ। पुनः सौंदर्य विशेष अर्थात रूप के द्वारा पार्थिव वस्तु का उत्कर्ष विशेष बता रहे हैं। लसत कुंडलम, यशोदा जी के भय से भाग रहे होने के कारण अथवा सतत ही बाल क्रीड़ा विशेष के प्रायण होने के कारण मानो जिनके दोनों गालों पर दो कुंडल निरंतर दोलन करने के कारण कीड़ा करते हुए प्रतीत हो रहे हैं, मैं उन ईश्वर को नमस्कार कर रहा हूँ। इस प्रकार या पार्थिव वस्तु का मुख शोभा विशेष उक्त हुआ। यहाँ लसत कुंडलम का दूसरा अर्थ भी संभव है। दोनों कुंडलों को श्री कृष्ण के कपोलों को चूमने का महा सौभाग्य प्राप्त है। अतः सभी प्रकार के भूषणों में कुंडल ही मुख्य है, इसलिए यहाँ कुंडल कहने से सभी भूषण उपलक्षित हो रहे हैं। अब लसंती शोभमाने कुंडले यस्मा तम, अर्थात जिनसे ये कुंडल शोभायमान हो रहे हैं मैं उनको नमस्कार कर रहा हूँ। इस प्रकार का विग्रह करने से यह अर्थ प्राप्त होता है कि पार्थिव वस्तु भूषणम भूषणंग अर्थात भूषण के भी भूषण स्वरूप हैं। इसलिए दशम स्कंध में गोपियों ने कहा है, लोके सौभाग्यमिदंज निरीक्ष्य रूपम यद्गो द्विजद्रुम मृगः पुलकान्य विभ्रन, अर्थात त्रिलोकी के सौभाग्य स्वरूप तुम्हारे इस रूप को निहार कर गाय पक्षी पेड़ मृग आदि भी पुलकित हो जाते हैं। उद्धव जी ने तृतीय स्कंध 3:2-12 में कहा है, विस्मापनम स्वस्य च स्वगर्दे परम पदम भूषणम भूषणम अंगनम, अर्थात श्री कृष्ण का रूप उनको भी विस्मित कर देने वाला था। वह सौभाग्य रूपी संपत्ति का परम आश्रय था और उनके अंग भूषणों के भी भूषण स्वरूप थे। पुनः परिवार विशेष के द्वारा पार्थिव वस्तु का उत्कर्ष विशेष कह रहे हैं, गोकुले भ्राजमानम, अर्थात मैं गोप गोपी गोवत्स आदि के निवास गोकुल में योग्य स्थान विशेष में पहले की अपेक्षा उत्कर्ष विशेष प्रकट करने के कारण अथवा गोकुल की स्वाभाविक शोभा विशेष के कारण शोभमान ईश्वर को नमस्कार कर रहा हूँ। दशम स्कंध में भी इस प्रकार का वर्णन प्राप्त होता है, चकास गोपी परिषद गतो अर्चित स त्रैलोक्य लक्ष्यम एक पदम बपुर धदत, अर्थात त्रिलोकी की शोभा संपत्ति के एकमात्र आश्रय स्वरूप अपने शरीर को प्रकट करते हुए श्री कृष्ण गोपियों की सभा में उनके द्वारा पूजित होकर शोभित हुए। पुनः लीला विशेष के द्वारा पार्थिव वस्तु का उत्कर्ष विशेष 1.5 श्लोकों में कह रहे हैं, यशोधा भी लूखा धावमानम परम मृष्टम, अर्थात दधि की मटकी फोड़ देना आदि अपराध के कारण माता यशोदा से डरकर छीके पर रखे माखन की चोरी करने के लिए पलटकर रखे हुए उखल पर से शीघ्रतापूर्वक भाग रहे ईश्वर को नमस्कार कर रहा हूँ। इस विषय में अधिक जानने की अपेक्षा रखने वाले दशम स्कंद के 9वें अध्याय के 8वें तथा 9वें श्लोक के अनुशीलन करें। यथा उलुखलांग्रेर उपरि व्यवस्थितम मरकाय कामम दत्तम शिचि स्थितम हयंगमम चौर्य विशंकिते क्षणम निरीक्ष्य पश्चात सुतमा गच्छने तमत यष्टिम प्रसमीक्ष्य सत्वर ततो अवारो यापासारा भित्वा गोप्यान अवधावनन यमाप योगिनाम शमम प्रवेष्टुम तपस्यरितम मनः, अर्थात श्री कृष्ण तब उल्टी हुई उखली के ऊपर चढ़कर छीके पर रखे हुए माखन को लेकर बंदरों को मन माने ढंग से खिला रहे थे। चोरी के कारण जिनके युगल नेत्र शंका से ग्रस्त थे, श्री यशोदा जी अपने लाला को उस अवस्था में देखकर धीरे धीरे उनके पीछे आईं। श्री कृष्ण मैया यशोदा के हाथ में छड़ी देखकर झट ओखल से कूदकर भयार्थ मनुष्य की भांति भागने लगे। योगी जन तपोबल से विशुद्ध हुए चित्त से ब्रह्मलीन होने के योग्य होने पर भी उनको नहीं पा सकते हैं। ऐसे श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए मैया उनके पीछे दौड़ी। अनंतर अत्यधिक वेग से दौड़कर गोपी यशोदा ने जिनको पीछे से पकड़ लिया है, उन ईश्वर को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। समास के कारण एक पद होने से यहाँ ध्रुव धातु से कत्वा के स्थान में यप आदेश हुआ है। अत्यंतोत्तरुत्य पद के द्वारा श्री यशोदा की भी स्तन नितंब की स्थूलता आदि सौंदर्य विशेष और स्नेह विशेष सूचित हो रहे हैं। यशोदया ना कहकर गोप्या इस प्रेम उक्ति परिपाटी द्वारा गोप जाति का ही वैसा महासौभाग्य ध्वनित हो रहा है। परम मृष्टम पद के द्वारा भगवान का भी मैया यशोदा में स्नेह विशेष ध्वनित हो रहा है। यहाँ भी भागवत 10:9-10 के श्लोक का अर्थ अनुसंधेय है, यथा अनवंचना मान जननी वृक्ष छल श्रोणि भरा क्रांत गति सुमध्यमा जवेन विस्त्रमसित केश वंदन अच्युत प्रसुन्ना मान गति ही परामृषत। अर्थात शीन कटी वाली यशोदा श्री कृष्ण का पीछा कर रही हैं। विशाल और चंचल नितंब के भार के कारण उनकी गति मंथर हो गई। शीघ्र गमन के कारण उनकी चोटी में गुथे फूल गिरकर उनका अनुगमन कर रहे हैं। ऐसी माँ यशोदा ने कृष्ण को पीछे से पकड़ लिया। इति श्री दामोदर अष्टक के प्रथम श्लोक की श्री सनातन गोस्वामी कृत दिग्दर्शनी टीका का भावानुवाद समाप्त। दिग्दर्शनी वृत्ति। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध के 9वें अध्याय में श्री दामोदर लीला का वर्णन किया गया है। वह लीला इस प्रकार है कि यशोदा जी अनेक बार बहुत सी गोपियों के उलाने सुन रही थी कि तुम्हारा लाला हमारे घर में चोरी करता है, माखन खा जाता है, परंतु यशोदे दूध दही और माखन को फैलाता अधिक है। यदि वह स्वयं खाए तो अच्छी बात है, परंतु वह खाता भी नहीं, हमारी दूध दही की बटकियाँ फोड़ देता है, बछड़ों को खोल देता है। हम नित्य प्रति दूध दही की हानि कैसे सहन करें? अब हमसे सहन नहीं होता। हम सब ने सोच लिया है कि हम आपके व्रज को छोड़कर अन्यत्र कहीं वास करेंगे। प्रतिदिन के उलाने सुनकर मैया मन में विचार करने लगी कि क्या वास्तव में लाला को अपने घर का माखन रुचिकर नहीं लगता? क्या खट्टा होता है, इसलिए अपने घर का माखन ना खाकर अन्य गोपियों के घर में घुसकर माखन की चोरी करता है? अतः आज स्वयं मैं अपने हाथों से अपने लाला के लिए माखन निकालूंगी। मेरे हाथों से निकला मीठा माखन अवश्य खाएगा, फिर वह दूसरों के घरों में चोरी करने नहीं जाएगा। दीपावली का त्योहार था। मैया ने घर के सभी सेवक सेविकाओं को अवकाश दे दिया। मंगला, गंगा, पिशंगी आदि पद्म गंधा गायों का दुग्ध स्वयं धोकर औटाया। फिर दूध को दही बनाने के लिए शीतोष्ण दूध में दही का जामुन देकर जमाया। भोर में दही को स्वयं मथने बैठी। दधि मंथन के समय अपने लाला के प्रेम में तन्मय होकर गान करने लगी। मथने की घर घर शब्द मृदंग के पिछले भाग का कार्य कर रहा था तथा अगले भाग से तान शब्द निकल रहा है, जिससे पूर्ण शब्द धिक तान निकलता है, जिसका अर्थ या भाव है, जो जीव श्री राधा कृष्ण का भजन एवं स्मरण नहीं करता उनका जीवन पशु के समान है तथा उसे धिक्कार है। मैया की चूड़ियों की झंकार करताल का कार्य कर रही है। मैया भाव में विभोर होकर गा रही है। उलो खले संभृत तांडुलंश्च संघटयन्तो मुसले प्रमुक्ता गायन्ति गोप्यो जनितानुरागा गोविंद दामो दर माधवेति। श्री गोविंद दामोदर स्तोत्रम 4। इधर मैया तो अपने गान रस में प्रमत हैं, उधर वात्सल्य प्रेम के भिखारी मैया के लाल कन्हैया माँ के प्रेम भरे संगीत को श्रवण कर अपने को नियंत्रित नहीं कर सके। सोचने लगे कि माँ प्रतिदिन मुझे लोरियाँ गाकर बड़े लाड से जगाती है, किंतु आज मुझे जगाने नहीं आई, मुझे बड़ी भूख लगी है। आत्मराम और आत्मकाम सर्वेश्वर प्रभु को भूख लग गई। वे मैया का दुग्ध पान करने के लिए जोर जोर से रोने लगे। धन्य है प्रभु, किंतु आज श्री श्याम सुंदर का रोना मैया के आगाध वात्सल्य समुद्र में ना जाने कहाँ समा गया। मैया उसका रोना सुन ना सकी, वह कीर्तन में अत्यंत संलग्न थी। अंत में कन्हैया बड़ी कठिनाई से पेट के सहारे अपनी शैया से उतरे। आंखों को मलते हुए रोते रोते मतवाले हस्ती के समान लड़खड़ाते हुए किसी प्रकार से अपनी मैया के पास पहुँचे और चलती हुई मथानी का दंड पकड़ लिया। दंड के रुकने से मैया का ध्यान भंग हुआ, अपने निकट लाला को देखकर झट अपनी गोद में बिठा लिया और उसे स्तनपान कराने लगी। अपने लाला कन्हैया को देखते ही मैया के अंग में अष्ट सात विकार उत्पन्न होने लगे और वात्सल्य रस का विशेष भाव अर्थात स्तनों से दूध भी झरने लगा। यहाँ भक्ति रसामी सिंधु के अनुसार वात्सल्य रस के विषय अवलंबन बाल कृष्ण हैं, आश्रय अवलंबन माँ यशोदा हैं। उद्दीपन बाल कृष्ण का सुंदर मुखमंडल है और मैया का अश्रुपात रोमांच स्तनों से दुग्ध स्त्राव आदि अष्ट सात्विक भाव एवं व्यभिचारी भाव हैं। स्थाई भाव मैया की वात्सल्य रति में उक्त विभाव अनुभाव आदि साथ मिलकर मैया को वात्सल्य रस का पान कराने लगे। इधर चूल्हे पर दुग्ध उबल रहा था, मानो दुग्ध सोच रहा है कि मैया के स्तन में निखिल विश्व ब्रह्मांड का दूध भरा है, उनका दुग्ध कभी भी समाप्त नहीं होगा और लाला कन्हैया का उदर भी कोई छोटा नहीं, उसमें अखिल ब्रह्मांड समा सकता है। अर्थात मैया दूध पिलाते पिलाते नहीं थकेगी और लाला भी निरंतर दूध पीते ही रहेंगे, तो मुझे श्री कृष्ण की सेवा का अवसर ही प्राप्त नहीं होगा, फिर निरर्थक सेवाहीन जीवन धारण करना व्यर्थ है। इस प्रकार विचार करके दूध अग्नि में अपनी आत्म आहुति देने लगा। साधक भक्तों की भी ऐसी उत्कंठा होनी चाहिए, यदि भजन करते समय भगवान की स्फूर्ति उनकी लीला व धाम की कृपा की अनुभूति ना हो तो हमारा जीवन व्यर्थ है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर श्री गौर सुंदर एवं उनके परिकरों के दर्शन के अभाव से कह रहे हैं, पाषाणी कोति वो माथा अनले पाशी वो गौरंग गुनेर निधि कोथा गेले पावो। प्रार्थना 41। यहाँ प्रसंगवश यह विशेष रूप में विचारनी है कि श्रील रूप गोस्वामी ने उत्तमा भक्ति की परिभाषा में कहा है, अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम आनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। श्री भक्ति रसामे सिंधु 1.1.11। भक्ति के दो लक्षण कहे गए हैं, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। यहाँ स्वरूप लक्षण को बतला रहे हैं। भक्ति की स्वरूप सिद्धि के लिए अनुकूलेन अर्थात श्री कृष्ण की प्रीति के अनुकूल हो, इस विशेषण का प्रयोग किया गया है, क्योंकि प्रतिकूल अर्थात विरुद्ध आचरण द्वारा भक्ति की सिद्धि ही नहीं होती। किन्हीं किन्हीं महानुभावों ने अनुकूल्य शब्द का अर्थ रोचमानव प्रवृत्ति अर्थात रुचिकर किया है, अर्थात श्री कृष्ण का जो अनुशीलन भक्ति किया जा रहा है वह अनुशीलन कृष्ण को रुचिकर होना चाहिए। कृष्ण के लिए ऐसी रोजमाना प्रवृत्ति का नाम अनुकूल्य विशिष्ट भक्ति है, किंतु इस प्रकार का अर्थ ग्रहण करने पर इसके लक्षण में अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोष होने की संभावना रहती है। जैसे चानुर मुष्टक आदि असुरों ने मल्ल युद्ध में श्री कृष्ण के अंगों पर प्रहार किया, उस प्रहार से श्री कृष्ण को बड़ा ही उत्साह हुआ। वे चारुण मुष्टिक आदि के साथ बड़े उत्साह से वीर रस का स्वादन करने लगे। असुरों का प्रहार रूप अनुशीलन श्री कृष्ण के लिए रुचिकर कैसे प्रतीत हो सकता है, इसके लिए श्रीमद्भागवत 1:13:30 का श्लोकांश उद्धृत किया गया है। मनुष्य वाणी में सत संप्रहार इति, अर्थात साधारण लोगों की दृष्टि में शत्रु के साथ भयानक युद्ध दुखजनक होने पर भी वीरों के लिए रुचिकर ही होता है। अतएव मल्ल युद्ध में असुरों का घोर प्रहार श्री कृष्ण को रुचिकर होने के कारण यदि असुरों की इस चेष्टा को भक्ति मान लिया जाए तो भक्ति के इस लक्षण में अतिव्याप्ति का दोष प्रवेश करता है। अर्थात असुरों का द्वेष भावपूर्ण जो प्रहार रूप अनुशीलन है वह भक्ति का अत्यंत विरोधी है, किंतु कृष्ण को रुचिकर होने के कारण उसमें भक्ति का लक्षण व्याप्त होता दिखाई पड़ता है। पुनः यशोदा मैया श्री कृष्ण को गोदी में बिठाकर स्तनपान करा रही थी, उधर चूल्हे पर दुग्ध उफन कर आग में गिर रहा था। यशोदा मैया अतृप्त श्री कृष्ण को छोड़कर दुग्ध रक्षा के लिए चली गई। श्री कृष्ण को यह रुचिकर नहीं हुआ, क्रोध से उनके छोटे छोटे होंठ कांपने लगे। संजात कोपः सुरिता अरुणा धर्मेति, श्रीमद्भागवत 10:9-6। यह यशोदा मैया की यह चेष्टा श्री कृष्ण को अरुचिकर होने के कारण भक्ति की परिभाषा में व्याप्त नहीं दिखती, अतः या भक्ति के लक्षण में अव्याप्ति दोष जैसा प्रतीत होता है। मां भागवत जनों का ऐसा स्वभाव होता है कि वे जीव मात्र को कृष्ण सेवा में नियुक्त करना चाहते हैं। मैया ने जब देखा कि कृष्ण सेवा के अभाव में दुग्ध अग्नि में जलकर अपनी आहुति दे रहा है, तब उन्होंने लाला को गोद से उतारकर दुग्ध को बचाने की चेष्टा की। कन्हैया ने मैया के स्तन को दोनों हाथों से जोर लगाकर पकड़ रखा है, पैरों से कमर पकड़ रखी है और अपनी समस्त शक्ति से मैया को पकड़े हैं। 10,000 हाथी का बल रखने वाली पूतना अपने को नहीं छुड़ा सकी, परंतु वात्सल्य प्रेम के आगे उन सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की शक्ति की एक भी नहीं चली और एक ही हाथ से छिड़क कर गोद से उतार कर पास ही बिठा दिया तथा दुग्ध की रक्षा के लिए चली गई। इसमें सिद्धांत ये है कि श्री कृष्ण का मैया के प्रति प्रेम और यशोदा मैया का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, इनमें यशोदा मैया का प्रेम बहुत ही अधिक है एवं श्री कृष्ण इसी प्रेम के वशीभूत हैं। इसी ममतामय प्रेम के सम्मुख सर्वशक्तिमान भगवान की समस्त ऐश्वर्य शक्ति पराजित हो जाती है। यहाँ एक और सिद्धांत विचारणीय है। ब्रज में पूर्णतम रूप से ऐश्वर्य प्रकाशित होने पर भी वह ब्रज लीला के अतल माधुर्य सागर में डूबा रहता है, अर्थात ब्रज का माधुर्य पूर्ण रूप से प्रकाशित ऐश्वर्य को भी अपने अंदर क्रोड़ीभूत कर लेता है। मैया ने दुग्ध को ठंडे पानी के छींटे देकर सांत्वना दी कि तुम्हें अभी कृष्ण की सेवा में नियुक्त कर रही हूँ, तुम इस प्रकार से प्राण मत त्यागो। इधर कन्हैया क्रोध से तिलमिला उठे, पास में रखे हुए लोड़े से मटकी की पैंदी में मारकर छेद कर दिया, जिससे उसमें भरा हुआ दधि निकलकर फैलने लगा। उस समय वे बड़े आश्चर्य से मटके से तरल दधि के प्रवाह को देखने लगे, किंतु उसे देखकर मैया की याद आई, इसलिए वे डरकर एक घर में घुस गए जिसका दरवाजा बाहर की ओर भी था। घर के भीतर छीके में रखे माखन को देखकर मन ललच गया। पास ही उल्टे रखे हुए ओखल पर चढ़कर मटकी से माखन निकालकर खाने लगे तथा कौओं और बंदरों को भी खिलाने लगे। उधर मैया ने वापस आकर देखा कि दधी भांड फूट गया है, जिसमें से तरल दही की धार बह रही है। मैया समझ गई कि यह करतूत मेरे सपूत की ही है। श्रील विश्वनाथ चकुर ठाकुर श्रीमद भागवत 10:9-7 के श्लोक की टीका में कहते हैं कि मटके के फोड़ने में बड़ी चतुराई है, अर्थात ना फोड़ने में शब्द, ना आभूषणों का शब्द और ना ही अन्य गृह में ओखली पर चढ़कर माखन लेने में शब्द। तो यह करतूत मेरे सबूत की ही है। जमीन पर फैले हुए तरल दही पर नन्हे नन्हे पैरों की छाप, माखन की सुगंध आदि से मैया ने सहज ही अनुमान लगा लिया कि लाला इसी घर के भीतर गया है। उन्होंने झाँक कर श्री कृष्ण को ओखली पर चढ़कर नवनीत चुराते देखा, तब हाथ में छोटी सी छड़ी लेकर सपूत को दंड देने के लिए बिल्ली की भांति दबे पांव से चली। किंतु घर में घुसते ही कौवे और बंदरों के भागने से श्री कृष्ण समझ गए कि मैया आ रही है। वे झट ओखली से कूदकर राजमार्ग की ओर भागने लगे। मैया ने भी उस राजमार्ग पर निकलकर पुत्र का पीछा किया। मैया के कुछ स्थूल श्यामल अंगों पर रेशमी वस्त्र फहरा रहे हैं, केश में सुंदर सुगंधित पुष्प गुथे हैं। मैया के द्रुत गति से दौड़ने पर वेणी से पुष्प गिरने लगे, मानो पुष्प कह रहे हो, मैया तू अकेली नहीं है, हम भी तेरा साथ दे रहे हैं, झट पकड़ लो। कृष्ण के दौड़ने की गति से मैया की दौड़ने की गति तीव्र है और उसी तीव्र गति से मैया ने कृष्ण के पृष्ठ भाग को पकड़ लिया। यदि श्री कृष्ण को पाना हो तो श्री कृष्ण के प्रति हमारा जो प्रेम है वह कृष्ण के प्रेम से अधिक होना चाहिए, तभी श्री कृष्ण को वशीभूत किया जा सकता है। प्रेम भी विषम भाव से लौकिक सद्बंधुवत करना होगा, जैसा कि ब्रजवासी एवं उनकी स्त्रियों का श्री कृष्ण के प्रति स्वाभाविक रूप में प्रेम है। ऐश्वर्य मिश्रित प्रेम से श्री कृष्ण को प्रसन्न तो किया जा सकता है किंतु वशीभूत नहीं। हाँ, यहाँ मैया श्री कृष्ण को लौकिक सद्बंधुवत पुत्र मानकर उन पर शासन कर रही हैं। अन्य सभी स्थानों पर श्री कृष्ण सेव्य हैं, किंतु ब्रज में ब्रजवासी जन सेव्य हैं तथा श्री कृष्ण सेवक हैं। वे गोपियों के कहने पर नृत्य करते हैं, बाबा नंद की ज्योति सिर पर रखकर लाते हैं, योग माया के द्वारा अपनी भगवत्ता को भूलकर नर्वत लीला कर रहे हैं। इसको ही माधुर्य लीला कहते हैं। श्री कृष्ण की ब्रज लीलाएं ऐश्वर्य से परिपूर्णतम हैं, किंतु ब्रजवासियों का प्रेम उनसे शिथिल नहीं होता, बल्कि उनके प्रेम का नवीन नवीन करण मधुर से सुमधुर बना देता है। यही ब्रज प्रेम का वैशिष्ट्य है। साधक को भी ऐसा साधन करना चाहिए जिसे देखकर श्री कृष्ण का हृदय द्रवित हो जाए तथा वे अधिक प्रतीक्षा ना कर सकें और भक्त को अपने हृदय से लगाकर अपनी सेवा में निमज्जित कर दें। नमामि, अपने स्तोत्र के आरंभ में अपनी अभीष्ट पूर्ति के लिए सत्यव्रत मुनि अपने इष्ट देव की स्तुति मंगलाचरण के रूप में कह रहे हैं। नमामि, मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, नमस्कार, वस्तु निर्देश एवं आशीर्वादात्मक। मुनि सर्वप्रथम नमस्कार एवं वस्तु निर्देश रूप में मंगलाचरण कर रहे हैं। यहाँ नमामि शब्द द्वारा श्री कृष्ण को नमस्कार कर रहे हैं। ईश्वर, श्री कृष्ण सभी ईश्वरों के भी मूल ईश्वर हैं। इसका प्रमाण श्रील शुकदेव गोस्वामी पाद श्रीमद् भागवत में कहते हैं, एते चांस कलह पुंसहम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मिडयन्ति युगे युगे, श्रीमद् भागवतम 1:3-28। पहले जिन अवतारों का वर्णन किया गया है उनमें कोई कोई पुरुष अवतार कारण और वशाई महाविष्णु के अंश हैं और कोई कोई आवेश अवतार हैं। ये सब अवतार असुरों द्वारा उत्पीड़ित जगत की रक्षा के लिए प्रत्येक युग में अवतरित होते हैं, किंतु ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं। अवतारों के मूल आद्य पुरुष हैं, माँ विष्णु श्री ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के अंश हैं। हमारे संप्रदाय के आदि गुरु श्री ब्रह्मा जी ने अपनी स्तुति में कहा है, ईश्वरा परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदः सर्व कारणम कारणम ब्रह्म संहिता 5:1। सत चित और आनंदमय विग्रह श्री कृष्ण ही सर्वेश्वरेश्वर हैं। वे स्वयं रूप अनादि एवं सर्व विष्णु और वैष्णव तत्व के आदि तथा सर्व कारणों के कारण हैं। सच्चिदानंद समस्त जगत के वंदनीय समस्त ईश्वरों के ईश्वर मूल अवतारी श्री कृष्ण ब्रज में नंद बाबा यशोदा मैया और अन्य गुरुजनों की वंदना करते हैं। सखाओं के साथ खेल में हार जाने पर भी परम आनंदित होते हैं। उनका जूठा खाते हैं, अपना जूठा उनको खिलाते हैं। गोपियों की सभा में बारंबार पराजित होने पर भी अपना सौभाग्य समझते हैं। रास के समय ब्रज सुंदरियों के साथ रमन की इच्छा होने के कारण उन्हें बुलाया, गोपियों ने श्री कृष्ण को नहीं बुलाया। वे श्री कृष्ण सच्चिदानंद हैं, अर्थात सत चित और आनंद से युक्त। सत अर्थात सत्ता नव किशोर नटवर श्री कृष्ण की स्वाभाविक सत्ता है। ये परम मनोहर नव किशोर रूप द्वारकाधीश की उपेक्षा अधिक सौंदर्यशाली है। इन्हीं की सत्ता से सभी ईश्वरों और जगत की सत्ता विद्यमान है। चित का अर्थ है ज्ञान, जिससे समस्त संबंध और भाव प्रकाशित होते हैं। ज्ञान का सार है भाव, जो बढ़ते बढ़ते प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव तथा महाभाव के रूप में परिणत होता है। यही महाभाव स्वरूपा स्वयं श्री राधा हैं। जब सत चित और आनंद तीनों एक साथ मिलित रूप में प्रकाशित होते हैं, तब वही सच्चिदानंद कंद श्री राधा कांत हैं। यही विशुद्ध सत्व है। समस्त रसों के विषय होते हुए भी श्री कृष्ण आश्रय जाति भाव की उच्चतम परिणति रूढ़ अधिरूढ़ आदि भावों को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए आश्रय जाति राधा के भाव एवं उनकी अंग कांति द्वारा दिदीप्यमान होकर श्री कृष्ण सच्चिदानंद गौर हरि का रूप धारण कर अपनी तीन वांछाओं को पूर्ण करते हैं। रूपम श्रीमद् भागवत में अनेक स्थानों पर श्री कृष्ण की रूप माधुरी का वर्णन किया गया है, किंतु उनमें भी तीन विशेष स्थलों पर अत्यंत अद्भुत चमत्कारी एवं मार्मिक रूप में वर्णन उपलब्ध होता है। प्रथम लोक पितामह ब्रह्मा जी के द्वारा नोमेड्यते अवरपुषु तड़िदंबराय गुंजावतांस परिपिच्छल सन्मुखाय वने सजरे कवल वेत्र विशान वेणु लक्ष्मीशे मृदुपदे पशुपंकजाय श्रीमद् भागवतम 10:14:1। प्रभो सारे विश्व ब्रह्मांड में एकमात्र आप ही स्तुति करने योग्य हैं। हे ब्रजेंद्र नंदन, नव जलधर मेघ के समान आपके इस वपु पर विद्युत की भांति झिलमिलाता हुआ पीताम्बर अद्भुत शोभा पा रहा है। कानों में मकराकित कुंडल और सिर पर मयूर पिच धारण करने से आपके मुख कमल पर अनोखी छटा छा रही है। गले में तरह तरह के पुष्पों और पत्तों से गूंथी हुई वनमाला, बगल में बेंत और सिंगा एवं कमर में फेंट में वेणु शोभा पा रही हैं। आपके कमनीय कोमल हाथों में दधि भात का कवल है। आपका यह वेश आपको भी आकर्षित करने वाला है। कमल से भी अति सुकोमल सुलक्षण चिन्हों से युक्त सुकुमार चरण गोपाल बालक का यह मधुर वेश, मैं तो बस इन्हीं चरण कमलों में पुनः पुनः दंडवत प्रणाम करता हूँ। द्वितीय द्विज पत्नियों के द्वारा श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल वरह धातु प्रवाल नटवेशम अनुवृतान से विन्यस्त हस्तमतरेन धुनान अब्जम कर्णोत्पाल कपोल मुखाम जहासम श्रीमद् भागवतम 10:23-22। नव जलधर के समान सांवली उनकी अंग कांति है। उस पर स्वर्ण की आभा को पराभूत करने वाला पीताम्बर झील मिला रहा है। गले में वनमाला लटक रही है। मस्तक पर मयूर का पंख सुशोभित हो रहा है। अंग अंग में रंगीन धातुओं से चित्रकारी कर रखी है। नए नए कपोलों के गुच्छों को शरीर में धारण कर नट सा सुंदर वेश बना रखा है। एक हाथ अपने सखा के कंधे पर रखे हैं तथा दूसरे हाथ से लीला कमल का फूल नचा रहे हैं। कानों में कुंडल हैं, कपोलों पर घुंघराली अलके लहरा रही हैं और मुख कमल मंद मंद मुस्कान से प्रफुल्लित हो रहा है। तृतीय, श्री सुखदेव गोस्वामी वेणु गीत के प्रसंग में ब्रज गोपियों के हृदय में स्फुरित श्री कृष्ण की रूप माधुरी का वर्णन इस श्लोक में कर रहे हैं। वरहा पीडम नटवर वपो कर्ण्यो कर्णिकारम विभिद्र वासम कनक कपीशम वैजयंतीस्य मालम रंध्रया वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशदा गीत कीर्तिथि। श्रीमद्भागवतम 10:21-5। ब्रजांगनाएं मन ही मन देखने लगी कि श्याम सुंदर अपने सखा गो बालकों के साथ वृंदारण्य में प्रवेश कर रहे हैं। उनके सिर पर मयूर कुछ, कानों में कनेर का पीला फूल, श्याम शरीर पर सुवर्ण जैसा चमकता पीला पीताम्बर और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों से ग्रथित घुटनों तक लंबी मनोहर वनमाला विराजमान है। रंगमंच पर सुंदर अभिनय करने वाले नटवर का सुंदर वेश है। वेणु के छिद्रों से अपना अर्धरामृत प्रवाहित कर रहे हैं। उनके पीछे पीछे ग्वाल बाल उनकी लोक पावनी कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार वैकुंठ से भी रमणीय यह वृंदावन धाम उनके शंख चक्र आदि लक्षणों से युक्त श्री चरण कमलों के चिन्हों से अंकित होकर और भी सुशोभित हो गया है। इनके अतिरिक्त और भी रास पंचाध्याय में गोपियां श्री कृष्ण की वेणुनाद की सम्मोहनी शक्ति द्वारा आकर्षित होकर अपने अपने घरों से रात को श्री श्याम सुंदर के पास आती हैं, तो श्याम उन्हें ठठोली कर अपने अपने घरों में लौट जाने को कह रहे हैं। तब गोपियां श्री श्याम सुंदर की रूप माधुरी का वर्णन कर रही हैं। का स्त्री अंगते कल पदायत वेणुगीत समोहित आर्य चरितन न चले त्रिलोक्यम त्रैलोक्यम सौभगम इदम च निरीक्ष रूपम यद गो द्विज ध्रुम मृग पुलकानी अभिभ्रन। श्रीमद्भागवतम 10:29-40। हे श्याम सुंदर, तीनों लोकों में ऐसी कौन सी स्त्री है जो मधुर मधुर पद और आरोह अवरोह क्रम से विधि प्रकार की मूर्छनाओं से युक्त तुम्हारी वंशी की तान सुनकर तथा इस त्रिलोक सुंदर मोहिनी मूर्ति को जो अपने एक बूंद सौंदर्य से त्रिलोकी को सौंदर्य का दान करती है एवं जिसे देखकर गो पक्षी वृक्ष और हिरण भी रोमांचित और पुलकित हो जाते हैं, अपने नेत्रों से निहार कर आर्य मर्यादा से विचलित न हो जाएं, कुल की मर्यादा और लोक लज्जा को त्याग कर तुम्हें अनुरक्त न हो जाएं। या श्री कृष्ण के वेणुनाद को श्रवण कर ब्रज गोपियां अपने समस्त भय संकोच धैर्य मर्यादा आदि को भूलकर जो जैसी स्थिति में थी उसी स्थिति में श्री कृष्ण से मिलने के लिए आतुर होकर दौड़ी। यहाँ तक कि अपनी प्रिय प्राण सखी को भी बिना बुलाए वेग से चल पड़ी। प्रत्येक गोपी यही समझ रही है कि श्री कृष्ण केवल मुझे ही बुला रहे हैं। जब श्री कृष्ण ने देखा कि ब्रज की अनुपम विभूतियां गोपियां मेरे निकट आ गई हैं, तब अपनी विनोद भरी वाक चातुरी से उन्हें मोहित करते हुए बोले, सुंदरी गोपियों, इस रात्रि काल में तुम अकेली यहाँ क्यों आई हो? क्या इस वन की प्राकृत शोभा सौंदर्य को देखने आई हो? अब अपने घर को लौट जाओ। कुलीन स्त्रियों का यह धर्म है कि वे अपने पति पिता और भाई बंधुओं की सेवा करें। पति चाहे बुरा स्वभाव वाला भाग्यहीन मूर्ख वृद्ध रोगी या निर्धन ही क्यों ना हो, उसकी सेवा करना ही पतिव्रता स्त्री का धर्म है। तुम लोग अपने अपने घर को लौट जाओ। गोपियां प्रियतम के इस अभिप्राय वचन को सुनकर उदास खीन हो गईं, फिर कहने लगी, प्यारे श्याम सुंदर, तुम्हारा उपदेश ठीक है, किंतु इस उपदेश के अनुसार तुम हमारे गुरु हुए तथा गुरु सेवा ही सर्वप्रथम करनी चाहिए। अब आप हमारी सेवा ग्रहण करें। अब तक हमारा चित घर के कार्यों में लगता था, किंतु तुमने वह चित चुरा लिया। अब हम घर में कैसे लौटें? श्री कृष्ण जब अपनी प्रकट लीला का संगोपन कर रहे थे, तब उन्होंने उद्धव जी को बुलाकर कहा कि मेरे चले जाने के बाद तुम पृथ्वी पर भागवत धर्म का प्रचार करना। तुम्हें पृथ्वी पर छोड़कर जा रहा हूँ। श्री कृष्ण के चले जाने पर वीरे में विवल होकर उद्धव ब्रज में आ रहे थे। तब बीच में विदुर जी से भेंट हुई। उद्धव जी ने विदुर जी से श्री कृष्ण के लीला संगोपन की बात बतलाई। इस प्रसंग में उद्धव जी द्वारा श्री कृष्ण के रूप का वर्णन, यन मर्त लीला उपायकम सयोग माया बलम दर्शत गृहतम विस्मापनम स्वस्य च सुभगर्दय परम पदम भूषणम भूषणम अंगनम श्रीमद् भागवतम 3:2-12। भगवान ने अपनी योग माया का प्रभाव दिखलाने के लिए नर लीला के उपयोगी अपने जिस शिव विग्रह को प्रकट किया, वह इतना मनोहर था कि उसे देखकर वे स्वयं भी विस्मित हो जाते थे। उस रूप में सौभाग्य तथा सुंदरता की पराकाष्ठा थी, जिससे आभूषण भी विभूषित हो जाते थे। और भी देखिए, रास के समय श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान होने पर गोपियां बीरे में विलाप करती हुई कीर्तन कर रही थीं। विलाप में कीर्तन सुनकर श्री कृष्ण अपने आप को रोक नहीं सके और गोपियों की सभा में प्रकट हुए। जिस समय वे प्रकट हुए, उस समय उनका कैसा सौंदर्य था, उसका वर्णन शिला सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। तासम अभिभूत शौरी स्मयमानम मुखाम भुजा पीताम्बर धरा स्रग्वी साक्षात मन्मथ मन्मथ श्रीमद् भागवतम 10:32-2। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिला हुआ था। गले में वैजयंती माला सुशोभित हो रही थी। पीताम्बर धारण किए हुए थे। उनका रूप क्या था, सबके मन को मत डालने वाला, कामदेव के मन को भी मथने वाला था। यहाँ पीताम्बर धरह अर्थात गोपियों का विरह देखकर श्री कृष्ण अपने पीताम्बर से उनके अश्रु पहुँच रहे हैं। प्रियजनों को इतना कष्ट दिया, ये अनुभव करके स्वयं को अपराधी मान रहे हैं और अपराध क्षमा प्रार्थना के लिए पीताम्बर को मुख में दबा लिया, मानो तृण दबा रखा हो। श्री कृष्ण की उस समय की छवि ऐसी थी कि कोटि कोटि कामदेव के मन को भी मथने वाली थी। यहाँ श्री सुखदेव गोस्वामी गोपियों के भाव में विभावित होकर अपने बाह्य स्वरूप को भूल गए। अत्यंत झुंझलाते हुए उन्होंने श्री कृष्ण के लिए शौरी शब्द का प्रयोग किया कि तुम क्षत्रियों के समान कठोर हो, गोप वंश के कोमल हृदय वाले नहीं हो, नहीं तो हम सब गोपियों को छोड़कर नहीं जाते। गोपियों के मध्य श्री कृष्ण अपने अस्मोद रूप में समस्त शोभा को प्रकाशित करते हुए प्रकट हुए। गोपियां पूर्ण रूप से श्री कृष्ण प्रेम से लबालब हैं। भगवान के सौंदर्य का निखार उनके परिकरों के हृदय स्थित प्रेम के कारण होता है। परिकर जितने श्रेष्ठ होंगे, उनकी रूप माधुरी का प्रकाश भी उतना ही अधिक होगा। शिला सुखदेव गोस्वामी अधिक स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं। चकास गोपी परिषद गतो अर्चितस त्रैलोक्य लक्ष्यमय पदम वपुर ददत श्रीमद् भागवतम 10:32-14। सहस्त्र सहस्त्र गोपियों के बीच में उनसे पूजित होकर भगवान श्री कृष्ण बड़े ही शोभ्यमान हो रहे थे। तीनों लोकों में, तीनों कालों में जितना भी सौंदर्य प्रकाशित होता है, वह सब तो भगवान के बिंदु मात्र सौंदर्य का आभास मात्र है। वे उसके एकमात्र आश्रय हैं। श्री नारायण में भी सौंदर्य है। उस रूप से आकर्षित होकर लक्ष्मी दिन रात उनकी श्री चरण सेवा में लगी रहती है, किंतु हृदय में श्री कृष्ण माधुरी का स्मरण होते ही श्री कृष्ण की रूप माधुरी को देखने की लालसा होती है। सोचती हैं, रास में तो प्रवेश नहीं मिलेगा, दूर से ही रास लीला का दर्शन करूंगी। इसका क्या कारण है, कहते हैं रास में गोपी समाज में श्री कृष्ण का जो अस्मा उर्ध्व रूप प्रकटित हुआ वह अन्यत्र कहीं भी प्रकाशित नहीं हुआ है। वह कैसा है? वह रूप साक्षात मन्मथ मन्मथ रूप है। उसी रूप का यहाँ वर्णन कर रहे हैं। श्री कृष्ण उदूखल से कूदकर भाग रहे हैं, सशंकित नेत्रों से पीछे देख रहे हैं, कानों में कुंडल झिलमिला रहे हैं, गले में त्रिवली है, कमर में करधनी सुशोभित है, श्री चरणों में नुपुरों की ध्वनि भी निराली गूंज कर रही है। नग्न अवस्था है, मात्र 2.5 वर्ष की आयु है। श्री सनातन गोस्वामी पाद बृहद भागवतामृता में इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं परिकरों के वैशिष्ट्य से भगवान के रूप सौंदर्य का वैशिष्ट्य होता है। भैरमुख जीवों पर दया करने तथा ब्रज प्रेम देने के लिए श्री कृष्ण ने अपने नव किशोर नटवर गोप वेश वेणुकर रूप को प्रकट किया है। यही रूप समस्त रूपों का मूल आधार है। इसी रूप से समस्त अवतार प्रकाशित होते हैं। इति श्री दामोदर अष्टक के प्रथम श्लोक की दिग्दर्शनी वृत्ति समाप्त।